हम लोग आज भगवद गीता के 7वें अध्याय के 11वें श्लोक को देख रहे हैं, जिसमें भगवान बता रहे हैं अपनी विभूतियों के बारे में, जिसके द्वारा वह जगत का पालन कर रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए, बलम बलवताम चाहम,
बलम बलवताम चाहम
काम राग विवर्जितम,
काम राग विवर्जितम
धर्मा विरुद्धो भूतेषु,
धर्मा विरुद्धो भूतेषु
कामोस्मि भरतर्षभ।
कामोस्मि भरतर्षभ।
तो बहुत इजी संस्कृत है। मैं बलवानों का बल हूं जो काम और राग से विवर्जित हो, यानी काम और राग से रहित हो। काम और राग का अर्थ अभी हम सीखेंगे। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, मैं वह काम हूं जो अधर्म के विरुद्ध ना हो। जीवों में मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध ना हो। उसका वर्णन अभी हम सुनने वाले हैं, उसको हम तभी समझेंगे। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूं, काम अर्थात इंग्लिश में कहते हैं लस्ट, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। गीता भूषण टीका। काम का अर्थ है स्वजीविका आदि की अभिलाषा। राग का अर्थ है कि इच्छित वस्तु प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अन्य और वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा रखे। ये दो अर्थ समझ में आ रहे हैं? ठीक है। राग का अर्थ यह भी है कि भोग को प्राप्त करने की अति तृष्णा जो चित्त को दूषित कर देती है। ये समझ में आ रहा है? भोग वासनाएं जो चित्त को दूषित करती है, ये सब राग कहलाता है। जो बल काम और राग से रहित है, वह व्यक्ति को अपने स्वयं नियत कर्तव्य करने में सक्षम बनाता है। तो आप बड़े स्पष्ट रूप से समझ सकते हो कि जब हमें कोई नियम नियत कर्तव्य करने को बोला जाता है, तो उसमें काम और राग के द्वारा ही विक्षेप होता है। विक्षेप मतलब व्यवधान उत्पन्न होता है। हम जानते हैं कि ये कार्य हमें करना चाहिए, लेकिन काम और राग के कारण उस कार्य को नहीं कर पाते हैं, उस कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाते। क्या जीवन में असहाय होते हो कभी नहीं देखते हम? तब होते हुए देखते हैं जब हम इंद्रिय संयम करना शुरू करते हैं। जब जानते हैं कि इंद्रिय संयम करना चाहिए, लेकिन राग रहता है, काम रहता है, इसकी वजह से व्यक्ति इंद्रिय संयम नहीं कर पाता है। तो यह शक्ति इंद्रिय संयम की, जो काम और राग से विवर्जित है, ये भगवान की शक्ति है। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं प्रभु जी? माइक दीजिए प्रभु जी।
प्रभु जी आप बोल रहे, मतलब कुछ काम और राग वैसे कुछ कर्तव्य वो नहीं करते, कि मेरा समझ ऐसा था कि कुछ नहीं करना चाहिए वो करते
वही
हैं।
अर्थ है ना, हमें पता है कि हमें जो करना चाहिए जो उसको नहीं कर पाते हैं किसी एक क्षण में, और जो नहीं करना चाहिए उसको कर बैठते हैं। तो यह काम और राग के द्वारा होता है। तो ऐसा बल जिसमें जो काम और राग से विवर्जित है, वह हमको शक्ति देता है कि हम अपने कर्तव्य को अपने आश्रम और वर्ण के अनुसार कर सकें, भले ही वह हम उसमें काम और राग का विक्षेप नहीं हो। ऐसा नहीं कि उसको करने में हम क्षमता प्राप्त ना हो। समझ पा रहे हैं? मैं वह काम हूं जिसका उपयोग स्वयं की पत्नी से केवल संतान उत्पत्ति करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो भी काम का उपयोग है, वह भगवान की अभिव्यक्ति नहीं है। अभिव्यक्ति मतलब प्रकटीकरण, वहां भगवान की उपस्थिति नहीं है। संतान की उत्पत्ति भी इसीलिए की जानी चाहिए ताकि वह जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सके। तो इसलिए ये सारी बातें भगवान की विभूति हैं, अगर कोई इसका उपयोग इस प्रकार से करता है। तात्पर्य तो बहुत आसान तात्पर्य है, पढ़ लीजिए। हाँ पढ़िए।
तात्पर्य, बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्लभों
दुर्लभों नहीं
दुर्बलों सॉरी
दुर्बलों। हाँ
दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इसी प्रकार
धर्म समस्त नहीं, धर्म सम्मत।
धर्म सम्मत मैथुन संतानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित
बहुत
बनाए।
इजी था, कुछ समझाना नहीं है। दूसरा श्लोक पढ़। हाँ कुछ पूछ बोलना चाहते हैं रोज? माइक पे बोलिए।
इसमें दो काम का अर्थ दो बार बताया गया है,
काम कर दो बार बताया गया।
स्वजीविका आदि की अभिलाषा और दूसरा
हाँ, दो अलग अलग अर्थ लिए गए यहाँ पे। कहने का अर्थ यह है कि एक व्यक्ति होता है कि अपने स्वजीविका स्थिति को बनाए रखने के लिए दूसरों को हम हनन करते हैं, जब हमारे में हृदय में भोग की इच्छा रहेगी तो हम दूसरों को कष्ट देंगे, तो वह भी काम का एक अर्थ है। आचार्य गण हमेशा कभी कभी थोड़े अर्थ अलग अलग लेते हैं कि शब्द का, तो उसको दोनों को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है,
किसी को एक्सप्लॉइट करने के लिए करते हैं जो भी राग में रहते हैं, इसके भी सोर्स तो भगवान हो गए।
देखिए सभी चीज भगवान से आती है, लेकिन हम क्या ग्रहण करते हैं। अब आप शाम के टाइम दूध पियेंगे कि गोबर खाएंगे, दोनों ही गाय से आता है। आप कहेंगे भाई गाय गोबर से तो गाय से भी आता है, तो गोबर को तो ना घोल घोल के पीने चालू कर दो। सभी चीज के स्रोत भगवान है, लेकिन हमें अच्छी वस्तु में ग्रहण करनी चाहिए। ठीक है ना, ये श्लोक मेरे पीछे बोलिए। ये चैव सात्विका भावा,
ये चैव सात्विका भावा,
राजसास्तामसाश्च ये,
राजसास्तामचास्च ते,
मत्त एवेति तान् विद्धि,
मत्त एवेति तान् विद्धि,
नत्वहं तेषु ते मयि,
नत्वहं तेषु ते मयि।
ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये, जितने भी भाव हैं चाहे वो सात्विक हो चाहे वो राजसिक हो और ताम या फिर तामसिक हो, वह सब मुझसे ही आते हैं, लेकिन समझना चाहिए कि ये मुझमें तो हैं लेकिन मैं इनमें नहीं हूं, मुझमें हैं लेकिन मैं इनमें नहीं हूं। तो उसको देखते हैं, देखिए भी कैसे क्या होता, पढ़िए सुनिए। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सत्वगुण हो रजगुण हो या तमोगुण हो। ए प्रकार से मैं सब कुछ हूं किंतु हूं स्वतंत्र, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं अपितु वे मेरे अधीन है। ये कहने का अर्थ है कि सारे गुण भगवान में आए हैं, भगवान से आए हैं और भगवान की इच्छा के अनुसार चलते हैं, लेकिन भगवान इनमें नहीं है, अर्थात भगवान गुणों से प्रभावित नहीं है। तो कब जब भगवान कृष्ण यहाँ पे आते हैं तो व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भी गुणों के वशीभूत होकर कार्य करते हैं। अगर वह 16,108 रानियां स्वीकार कर रहे हैं तो उसका अर्थ यह नहीं है कि वह कामी हो जाते हैं। ठीक है, गीता भूषण टीका। अपनी कुछ विभूतियों का वर्णन करने के बाद भगवान अब सारांश में उनको कह रहे हैं। सारांश इसलिए क्योंकि कहां कहां तक वर्णन किया जाए, सभी कुछ भगवान से ही आया है, भगवान की शक्ति है। यह जानो कि सत्व रज और तमोगुण की विभिन्न अवस्थाएं जो विभिन्न शरीरों इंद्रियों और इंद्रिय विषयों का कारण है और जो उनमें विद्वान भी हैं और जो मुझसे ही शक्ति प्राप्त करती हैं, वह मुझसे ही उद्भूत होती हैं। ये लाइन समझ में आ रही है, लंबी लाइन हो गई। इस जगत में हम शरीर देखते हैं इंद्रिय देखते हैं। शरीर और इंद्रिय का अर्थ समझते हैं आप लोग, या उसमें कोई कठिनाई है? नहीं। और इंद्रिय विषय जानते हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द। ये सब कहाँ से आ रहा है? प्रकृति के तीन गुणों से। ये समझ में आ रहा है ना? और ये गुण कहाँ से आ रहे हैं? भगवान से। और उन गुणों को शक्ति कौन दे रहा है? भगवान। जैसे हम जानते हैं प्रधान में सत्वगुण रजगुण तमोगुण किस किस अवस्था में रहते हैं, क्या रेशियो रहता है? 1:1:1, और कोई सृष्टि नहीं होती। फिर भगवान उसमें अपनी काल शक्ति का शोभ करते हैं, शोभ अर्थात दृष्टिपात करते हैं, ऐसे समझ लीजिए। और उसके बाद गुणों का होड़ चालू हो जाती है और फिर उसके बाद आगे सृष्टि होती है। तो उससे अन्य वस्तु में शरीर इंद्रिय और इंद्रिय विषय प्रकट होते हैं। ये सब समझ में आ रहा है? तो पहले भी हमने बताया था, कोई मुश्किल बात नहीं है। परंतु मैं उनमें नहीं हूं, अर्थात अपनी सत्ता के लिए मैं उन पर निर्भर नहीं हूं, परंतु वे सब मुझ पर निर्भर हैं अपनी सत्ता के लिए। ये समझ में आए? अस्तित्व भगवान का धाम में कौन सा गुण प्रचुर मात्रा में रहता है, सत्वगुण या रजोगुण? कोई भी गुण नहीं रहता कोई भी गुण नहीं है, शुद्ध सत्व है, चिदात्मक है वो। तो वह स्थान पूरी तरह से गुणों से रहित है, गुण उसमें है ही नहीं, गुणों का कोई प्रवेश ही नहीं, माया का कोई प्रवेश ही नहीं है। तो इसलिए लेकिन जो गुण है वो कहाँ से आ रहे हैं? भगवान की शक्ति से। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि गुण मुझ में है लेकिन मैं गुणों में नहीं हूं, अर्थात गुणों का अस्तित्व संचालन शक्ति कहाँ से आता है? भगवान से। लेकिन भगवान इन गुणों के द्वारा संचालित नहीं होते, अभी तो जब इस जगत में भी आते हैं तो भी गुणों के द्वारा संचालित नहीं होते, वे अपनी निर्गुण अवस्था को बनाए रखते हैं। ये सब समझ में आता है? बहुत ईजी होगा आप तो। गुण का इफेक्ट केवल भौतिक जगत में होता है,
ब्रह्मलोक तक या स्वर्ग लोक में?
ये नहीं नहीं ब्रह्मलोक पर्यंत गुणों का प्रभाव होता है, ये अभी आगे वाले श्लोकों में आने वाला है, 13वें श्लोक में क्लियर हो जाएगा। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्ति न वर्जन माम उपेत्य तो कौन थे पुनर्जन्म न विद्यते। तात्पर्य पढ़िए अनुपम कृष्ण, अभी पढ़ा था आपने।
संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते।
एक छोटे से बात है, जैसे आप पपेट शो समझते हैं ना, पपेट शो कठपुतली का शो, उसमें जो रस्सियां है वो दिखाई नहीं पड़ती, तो ऐसा लगता है पुतली जो है अपने आप हाथ हिला रही है, सब कुछ बोल रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन उसके पीछे शो को चलाने वाला एक क्या कहेंगे उसको, नाटककार कह सकते हैं, नाटककार है जो भी है, एक आदमी है। तो उसी प्रकार से ये जो गुण है भले दिखाई नहीं पड़ते, इन गुणों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति खूब सो रहा है, मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, मैं भी सोता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सोना कौन सी क्रिया है, तमोगुण की। तो अब हमको तमोगुण नहीं दिखता, लेकिन तमोगुण व्यक्ति दिखता है, या तमोगुण के प्रभाव में व्यक्ति दिखता है कि नहीं। जैसे हम लोग चेहरा जो सुबह उठने के बाद देखते हैं शीशे में, तो बड़ा अजीब सा लगता है, क्यों, क्योंकि वह तमोगुण के प्रभाव में रहता है। चेहरा तो वही है, चेहरे में कोई परिवर्तन नहीं आता। या जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो वो रजोगुण में होता है कि नहीं। जब उसे बहुत हृदय में जब बहुत इच्छा हो कार्य करने की, मतलब भक्ति के कार्य की बात नहीं कर रहा हूँ, भोग प्राप्ति करने के कार्य हो रहे हैं, समझना चाहिए कि हमारे हृदय में रजोगुण का प्रभाव हो रहा है, और इसी प्रभाव में व्यक्ति कार्य कर रहा है। बहुत कार्य करने की लालसा है, तो इसको हम आगे चर्चा करेंगे जब गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। मैं खाली बोल रहा हूँ कि गुणों को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम गुणों के प्रभाव को देखने का क्षमता को हमें डेवलप, क्या कहेंगे हिंदी में, विकसित करना चाहिए। भले ही हम गुणों को ना देख पाए, देख भी नहीं सकते, लेकिन गुणों के प्रभाव को जरूर देखना चाहिए। ये सत्वगुण का लक्षण है। सत्वगुण में व्यक्ति भी कुछ कुछ रजोगुण तमोगुण से प्रभावित होता है, लेकिन वह गुणों के प्रभाव को देखने में सक्षम हो पाता, इसीलिए शास्त्र सुनना चाहिए। ठीक है
प्रभु जी, जैसे कि मान लीजिए कोई सोता है, तो अगर वो सो रहा है मंगल आड़ी उठने के लिए, तो ये सब उसकी भक्ति हो जाती है ना,
भक्ति
के अंग भी करता है भगवान के लिए, कर रहा है तो
भक्ति के अंग की हो जाता है, ठीक है। लेकिन जनरली हम ऐसा करते नहीं है। अगर हम मंगल आरती के लिए उठने के लिए सो रहे हैं और मंगल आरती के लिए ना उठे, तो मंगल आरती के लिए उठने के लिए तो नहीं सो रहे ना। बोला जाता है कि मंगल आरती के लिए उठने के लिए सो रहे हैं, लेकिन उठते नहीं है मंगल आरती में, तो फिर तो मंगल आरती में उठने के लिए नहीं सो रहे, फिर तो तमोगुण हुआ ना। कभी उठ जाते, उठ के फिर सो गए, उसके बाद फिर देखा गए कि नहीं गए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे भक्ति से होता है,
तो फिर माइंड भी तो फ्रेश रहता है तमोगुण से उठने के बाद।
हाँ, तो तमोगुण का उपयोग कर रहे हैं हम लोग भगवान की सेवा के लिए, इन द सेंस कि हम अपने शरीर को में रस देना होता है ताकि हम भक्ति ठीक से कर सके, लेकिन भक्ति के समय उठ जाना चाहिए ना। कोई बोल रहा है कि हम मंगल आरती में उठने के लिए सो रहे हैं, तो तमोगुण का उपयोग कर रहे हैं, तो वह भक्ति है। लेकिन अब मंगल आरती के समय ना उठे, मतलब 4:30 की मंगल आरती में कोई 5 बजे आ रहा है, तो भी कहे कि कैसे कहा जा सकता है कि ये तमोगुण का उपयोग है, फिर तमोगुण उसका उपयोग कर रहा है ये मान सकते हैं, लेकिन वह तमोगुण का उपयोग नहीं कर रहा। प्रश्न पूछेंगे तो सोचना चाहिए ना कि हम उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं। ठीक है,
उदाहरणार्थ राज्य के निर्देशन नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। इसी प्रकार प्रकृति के सभी गुण सतो रजो तथा तमो गुण भगवान कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसलिए वे निर्गुण है, जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत हैं, किंतु ये उनसे प्रभावित उन्हें प्रभावित नहीं करते, यह भगवान का विशेष लक्षण है।
मतलब ऐसा कहा जाए कि जल में भी रहते हैं भगवान, जल में भी आए तो भीगते नहीं है। ये जगत पूरा गुणमय है, उस गुणमय जगत में आने के बाद भी भगवान निर्गुण बने रहते हैं, ये भगवान की अद्भुत शक्ति है। तो उसमें कुछ मैं समझता नहीं, समझाना है। एक बात जरूर समझ में आनी चाहिए कि जो लोग कृष्ण को समान व्यक्ति मानते हैं, उनको ये नोट कर लेना चाहिए कि कृष्ण भले ही समान व्यक्ति के रूप में लग रहे हैं, उनके कार्य जो हैं वो असाधारण हैं, और उनके कार्य को सुनने मात्र से, तत्व में जानने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसलिए सिद्धांत को सीखना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ सभी भक्तों को पता है, तो इसलिए मैं कोई ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहा। कोई प्रश्न है यहाँ तक इसमें? ठीक है, हम लोग अब